शांति। जो भी हम पढ़ते हैं उसको यदि 24 घंटे के अंदर हम रिवाइज नहीं करते तो 90% संभावना है कि वो भूल जाता है, और एक हफ्ते में केवल 10% याद रहता है एक हफ्ते के बाद। इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते लिखने का अभ्यास करना है, राइट व्हाइल्स्ट रीडिंग, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। पढ़ना और पढ़ते पढ़ते ही नोट्स, एक टेक्निक हमने पहले भी डिस्कस की थी, फाइनमैन टेक्निक। जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम सुनते हैं उसको ऐसे सुनना है कि हमें वो एक छोटे से बच्चे को बाद में सिखाना है, समझाना है। इसका हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था पुरानी क्लासेस में, सिमरन क्रांति में, फरवरी में, कि हम यदि दूसरों को समझा सकते हैं तो ही माना जाएगा कि वो हमने समझा है। और वो दूसरा कौन होना चाहिए? एक छोटा सा बच्चा। उसको यदि हम समझा सके, अर्थात हमने उसे, हमने उस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है। तो एक होता है, इसको कहते हैं फाइनमैन टेक्निक, जिसकी हमने चर्चा भी की थी और उसका हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था, याद होगा ना सुशील भाई, छोटे बच्चे को परिचय दिया था बाबा का, क्योंकि सुनाना है। जो पत्रकार लोग होते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पेन लेके बैठते हैं ना, एक एक पॉइंट नोट करते हैं। उस समय कोई अपने घर का कोई सोचते रहता है क्या? नहीं, क्योंकि उसे एक एक पॉइंट नोट करनी है और आके तुरंत टाइप करना है या अखबार में डालना है। तो एक होता है सोलो स्टडी, एक होता है ग्रुप स्टडी, दोनों का इंपॉर्टेंस है। पहले अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो ग्रुप में सीखो और फिर अकेले में जाके उसे पढ़ना है। और यदि कोई सब्जेक्ट बोर हो रहा है, जैसे कोई मुरली है, जैसे ये मुरली है 18 जनवरी 2003, अभी पढ़ना है तो बड़ा बोर हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, टेक्निक क्या है? तो टुकड़ा टुकड़ा इच्छा ही नहीं हो रही है। कोई भी विषय यदि बोर हो रहा है तो टेक्निक ये है कि उसके हिस्ट्री का थोड़ा स्टडी किया जाए कि ये मुरली, ये दिन कौन सा था, ये कहाँ चली थी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। जैसे ये डस्टर के बारे में पढ़ना है, ये डस्टर ऐसा है, डस्टर काला है, पीला है, नीला है, ये नहीं, ये किसने खोजा, किस साल में ये खोजा गया, क्यों खोजा गया, खोजने वाले ने इसे क्यों खोजा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना। उसी तरह जो भी मुरली की डेट आती है ना, उस डेट के विषय में थोड़ा जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी है। जैसे ये एक डेट है तो इस डेट में क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी, हरिवंश राय बच्चन जो थे उन्होंने शरीर छोड़ा था इस डेट को, एक दूसरा बर्थ एनिवर्सरी किसकी किसकी थी, तो एक दूसरा व्यक्ति है जिसको महादेव गोविंद रानडे, सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र जिन्हें कहा जाता है, उसके जीवन की कोई घटना है क्या, जैसे अभी भाषा की बात चल रही थी, तो ये जो गोविंद रानडे जी थे, ज्यूरिस्ट थे, नेशनलिस्ट थे, लेखक थे, स्कॉलर थे, उनको भाषाएं सीखने का बहुत इंटरेस्ट था, सभी भाषाएं सीखने की। तो उनके गली में एक नाई था जो बंगाली भाषा जानता था, बांग्ला, तो वो उसके साथ पास जाते थे किसी भी बहाने से और घंटों बैठ के उसके साथ बातें करते थे। उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा गोविंद रानडे की, तुम इतने बड़े जज होके एक नाई के साथ बातें करते रहते हो, अच्छा लगता है, ये तुम्हारे इज्जत के थोड़ा सा नीचे है। तो वो कहते हैं मुझे बस भाषा सीखनी है और ज्ञान ऊंच नीच की पिटारी में बंद नहीं है, अगर सीखना है तो छोटे से बच्चे से भी सीखो या खुद छोटा बच्चा बन जाओ। जैसे अभी अभी बहन जी ने कहा, बी ए चाइल्ड, छोटा बच्चा ही बन जाना। तो अगर सीखना है कुछ तो ये हटा देना है कि इससे मैं कैसे सीखूं, ये उम्र में इतना छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। सीखना है तो सबसे सीखना है। तो सोलो स्टडी, ग्रुप स्टडी, राइटिंग वाइल्स रीडिंग, और ऐसे ऐसे सुनना है मुरली भी। सबसे पहले तो डायरी होनी चाहिए, बिना डायरी के इस क्लास में बैठना अलाउड ही नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर कोई आराम से बैठे है, मतलब भक्ति मार्ग सत्संग, कनरस आ रहा है, यहां से जाते ही यहां जो भी सुना खलास। अभी जो क्लास हुई उस क्लास में जितने सारे उदाहरण दिए गए, पंडित का उदाहरण दिया गया, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी 1994 क्या हो रहा था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन और फिर 11 मास के बाद, तो ये सारे जो है ना एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल्स यदि हमने नोट नहीं किए तो ये बस यहीं खत्म हो गए। फिर ये ना तो हम रिवाइज करते हैं, और इसके कितना इस सबके पास इतना टाइम भी नहीं है ये सब क्लासेस रिवाइज करने का। हर एक की दिनचर्या में हजारों बातें हैं, कौन रिवाइज करेगा इसको। तो इफ यू डोंट रिवाइज खतास। इसके लिए सुनते सुनते तीन कार्य करने हमेशा, चाहे मुरली या क्लास कोई भी हो। सबसे पहला कार्य सुनना, दूसरा कार्य लिखना, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाना भी एक टेक्निक है। खाली सुनना तो बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ टोटल प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। तीसरा योग, क्या करना है, किरणें मुझ पर आ रही है। ये तीनों कार्य चाहे क्लास में कर रहे हो और कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करना है। अभी बहन जी ने जो किया ये कितनी बड़ी प्रेरणा है। एक व्यक्ति जिसने कभी हिंदी बोला ही नहीं, वो हिंदी में क्लास करा रही है, हम सब के लिए कितनी बड़ी बात है। कल आपको बोलेंगे इंग्लिश में आके इधर कराओ, तो और इतनी ईमानदारी से क्लास कराई सच्चाई सफाई थी उसमें ना, और सारी पॉइंट्स कवर कर ली, और इतने अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए, और खुद का भी उदाहरण दिया, और जो बात उन्होंने कही बच्चा बन जाओ, वो उनके जीवन में ही चरितार्थ होती है। हम इतने सालों से देख रहे हैं उषा बहन जी को, उनका स्वभाव एक छोटे बच्चे जैसा है, वो किसी के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, और बहुत बहुत पुराने हैं। और हम तो ये कहेंगे यहाँ पर बहुत सारी जो इंग्लिश क्लासेस चली वो सब उन्हीं की प्रेरणा से चली, नहीं तो हिंदी बोलते बोलते इतना वैराग आ जाता है बाकी सबसे कि उसको उस फ्लो को तोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में 10-15 सालों में कितनी कितनी बार बहुत बहुत प्रेरणाएं दी है, और बहुत बार उनसे ज्ञान की चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ ओपीडी में, यहाँ अलग अलग स्थानों पर, एंड वेरी वेरी चाइल्ड लाइक। वो आपने अभी देखा ही बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये गोपाल महादेव गोविंद रानेड़े के विषय में बताया, उनका जन्म भी इसी तारीख को है, तो हमने जस्ट ढूंढते ढूंढते वो ढूंढा। तो जब भी कुछ बोर हो रहा है तो ढूंढो इस 18 जनवरी 2003 में कौन सी घटनाएं हुई थी भारत में, देश में विदेश में, ताकि उसका थोड़ा सा कोरिलेट हो सके, क्योंकि ये मुरली उसी आसपास चल रही है ना। कोई भूकंप आया, क्या आया, बाबा उस समय ये बोल रहे हैं, हम कहां थे ये भी एक दूसरा प्रश्न है। उस समय धरती पर हम क्या कर रहे थे, इस समय इस डेट को उस समय तो ये सारी बातें हैं। और अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते रहना है, नए नए एक्सपेरिमेंट में, कहां क्या मिस्टेक्स हो रही है, करेज। बाबा भी और ध्यान से सुनेगा जब भी हम किसी नए भाषा में नई बाबा वास्तव में हिंदी मराठी तेलुगु तमिल स्पैनिश ये देखता ही नहीं है, उसके पास भाषा थोड़ी पहुंचती है। हम एक सर्कल में बैठ रहे हैं और सभी को प्रेम की किरणें, प्रेम के प्रकंपन भेज रहे हैं। ओम शांति। तो ये सबसे पहला कार्य है लव एनर्जी सर्कल। इमेजिन करो या वास्तव में अगर बैठ सके कोई ग्रुप है तो सर्कल में बैठ जाओ और एक दूसरे को क्या देना है, लव एनर्जी। होमवर्क नंबर वन। होमवर्क नंबर टू, स्मृति की माला को याद करो तो राइट थ्री सेल्फ आइडेंटिटीज। मैं कौन हूं, इसके तीन उत्तर लिखने हैं। उस उत्तर में मैं आत्मा हूं नहीं आना चाहिए। उत्तर में वो ना लिखना। इनके महावाक्य को पढ़ना, वो कहते हैं कि हमने अपने जीवन की ये सबसे बड़ी बात है जो हम कर रहे हैं। टॉपर भी थे तो जीवन की ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जीवन का कि हम भगवान के महावाक्यों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक शास्त्र पढ़े, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उसमें से कहानियां मिली बस, पर रियल क्रक्स एसेंस वो भगवान के महावाक्यों में। तो ये एक, और दूसरा एक फ्लो चार्ट बनाना है। होमवर्क नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या था होमवर्क? चार नंबर की पॉइंट क्या थी? सूर्य नहीं, चार नंबर की। मैं कौन हूं? निमित्त हूं, करण कराना और करत। तो ये बाबा फ्लो चार्ट बनाना है, फिर एक एरो, फिर मैं मी निमित्त, फिर कर्म और आगे सेवा। ये फ्लो चार्ट है, बाबा मी एक्शन सेवा, एक एक एरो देते जाना है। और लास्ट है एक एक्टिविटी, समीप आओ समीप आओ समीप आओ। कौन कह रहा है? बाबा। तो अपने दोनों हाथ को ऐसे करना है और सोचो बाबा, फील द क्लोजनेस विथ गॉड, आंखें बंद और बाबा मेरे समीप है। कल भी एक वाक्य कहा था, बाबा ने मेरे लिए बहुत अच्छा, बेहतर और बेहतरीन सोच के रखा है। अनुभव करो कि बाबा मेरे समीप है। ओम शांति। जितना हम सोचते हैं वो हमारे समीप है, उससे वो कई गुना ज्यादा समीप है। बहुत डीपली वो हमसे कनेक्टेड है, तो उससे वो कनेक्शन जोड़ना है। तो आज के ये पांच कार्य हैं। कौन कौन से कार्य? सबसे पहले बताया इमेजिनेशन वाला, एक सर्कल इमेजिन करो या वास्तव में बैठ जाओ और उसमें क्या करना है, लव एनर्जी सर्कल। दूसरा राइट थ्री सेल्फ आइडेंटिटीज, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए हूं, मैं हूं या नहीं हूं या ब्रह्म है ये। तीसरा वो पावरफुल सोल, पावर शेयरिंग रेज ड्रॉइंग, बीच में सूर्य जो मैं हूं और उससे क्या फैल रही है, किरणें फैल रही है। और फिर एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या करेंगे, बाबा मैं एक्शन सेवा, ये फ्लो चार्ट है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और लास्ट है एक एक्टिविटी। एकांत में जब भी हो तो भी हाथ के साथ एक्टिविटी करनी है कि बाबा मेरे बहुत बहुत समीप हैं। तो आज के ये पांच एक्टिविटीज है। और एक लास्ट पॉइंट और बतानी है, वो है एक्सपेरिमेंट। जब भी साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट होता है उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। एक, यदि कोई कहता है मैंने H+2 H2O ये वाटर है, ये क्यों मानूं, ये कोई कोई दूसरा क्यों मानेगा, ये तुम्हारा हो सकता है। तो सबसे पहले वो रिपीटेबल होना चाहिए, जो भी प्रयोग करो वो अगर रिपीट करो तो वही परिणाम आना चाहिए। H+2 जब जब रिपीट करो तो वाटर बनना चाहिए H2O। तो यहां पर भी यदि हम कोई सामान लेते हैं और उसको एक अनुभूति हुई तो अगली बार भी वही अनुभूति होनी चाहिए या उससे अच्छी। तो इसको कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट कैसे होना चाहिए, रिपीट करते आना चाहिए। दूसरा रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति वो करता है तो भी वही परिणाम आना चाहिए। ये साइंस के सिद्धांत है सारे, तो वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्कर और पानी मिलाया, एक को मीठा लगा दूसरों को नहीं, वो मीठा ही लगना चाहिए तभी वो मानेंगे वो शक्कर है, नहीं तो तुम में कोई प्रॉब्लम है। तो ये है रिप्रोड्यूसिबल। और तीसरा रिलायबल, वो रिलायबल होना चाहिए एक्सपेरिमेंट। तो ये जो साइंस के सिद्धांत है हमें योग में प्रयोग करने हैं अलग अलग स्थान पर। जैसे कब हम स्थित प्रज्ञ योगी बनेंगे, जब अपमान हो रहा है और हम सहन कर रहे हैं, अपमान हो ही नहीं रहा है और सहन कर रहे हैं, मैं सहनशीलता का देवता हूं, ये हूं, या हूं, त्या हूं। तो फिर क्या है, वो रिजल्ट आना चाहिए उसकी, कि मैंने स्वमान लिया, बाबा मेरे समीप है। ये जो अकेलापन लगता है ना व्यक्ति को, होपलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है कि सारे दरवाजे बंद, तभी तो जाके एक्सट्रीम स्टेप लेता है कोई। क्यों लेता है? क्योंकि ऐसा लगता है कोई भी नहीं बचा आप जीवन में, बाबा जैसे है ही नहीं, कोई भी नहीं है, तब तो वो करता है ना। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके देखना है उसकी समीपता का, इट शुड बी रिपीटेबल, और बार बार करना है उसको, रिप्रोड्यूसिबल, देखो दूसरों ने कैसे किया, उनको कैसे मदद का अनुभव हुआ, और लास्ट रिलायबल एक्सपेरिमेंट। तो ये 3R है। तो ये आज का सारा कार्य था, और इस क्लास की विशेषता की थी कि पहली बार किसी की क्लास के लिए तालियां बजी, एक बार फिर से बजा दो उषा बहन जी के लिए ताली। आज तक बड़े बड़े धुरंधर आके गए पर तालियां नहीं बजी। हाँ समरी, कुछ बोलना है बोल दो और आ जाओ आ जाओ। माइक है। सो क्लास वॉज सो ब्यूटिफुल दैट द रिविजन पर्सन वॉन्ट्स टू रिवाइज फ्यू मोर थिंग्स। उषा बेन, कुछ बातें और रिवाइज करनी थी वो भूल गई। छोड़ो,
ओम शांति। उन्होंने लास्ट में जब समरी बोलने के लिए कहा, बहुत अच्छी बात शेयर किए थे। कहा कि 18 जनवरी की मुरली बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने, लेकिन उनको ये क्लियर हुआ कि एक व्यक्ति कर्मातीत बनने के बाद भी स्वर्ग नहीं आया। तो ये बताता है कि हम में भी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए कभी भी, ब्राह्मणों में सहयोग होना चाहिए। तो क्योंकि हम सब ब्राह्मण परिवार एक दूसरे के सेवा नहीं करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो एग्जाम्पल बनकर दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं, और हम सबको साथ जाना है, एक अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा बाबा का जैसे एग्जाम्पल बने, हम भी वैसे एग्जाम्पल बने, एक दूसरे से रेस्पेक्ट और ऑनर के साथ रहे, नॉट मतलब पुश और पुल, दूसरे एक दूसरे को नीचे लेना नहीं है, लाना नहीं है। ये हमारे लिए, जब हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, वो हमारे लिए दुआ बन जाती है।
हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून,
सुकून सुकून सुकून,
शिव बाबा तू ही देता दिल को सुकून, दर्द के पार सुकून, भीड़ से दूर सुकून, खुद से मेल सुकून, सांसों की राहत सुकून, रात की गोद सुकून, आंखों की नींद सुकून, भीतर का घर सुकून, विश्राम का नाम सुकून, हर रूह की प्यास है सुकून, हर खामोशी में गूंजता है सुकून।